हरे कृष्णा। तो जगन्नाथ भगवान की लीलाओं की श्रृंखला में आज 22 जुलाई को ये आखिरी कड़ी है जिसमें हम जगन्नाथ की कथा बताने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी सब जानते हैं, बड़े अद्भुत भगवान हैं। उनका स्वरूप, जिस प्रकार से उनकी आँखें हैं, जिस प्रकार से उनका शरीर बना हुआ है, जिस प्रकार से वो रहते हैं, जहाँ से आए हैं, हर चीज़ उनकी विचित्र है, अचिंत्य है, समझने के लिए बहुत कठिन है, लेकिन संतों की कृपा से हम उसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथपुरी में उनकी बहुत चित्र विचित्र लीलाएँ हैं, जिसके बारे में हम आज बताने का प्रयास करेंगे। एक कथा उनकी ऐसे आती है कि जगन्नाथ जी की विशेषता यह है कि उनकी सेवा जो है वो ब्राह्मण लोग नहीं करते। ये भगवान का वरदान है उनके लिए कि जो ब्राह्मण से निचले क्लास के लोग हैं उनको भगवान ने अधिकार दिया है कि जगन्नाथपुरी में पूरे साल भर की सेवा वो करें। और यहाँ तक कि जो उनकी इतनी विशेषता है कि उनकी सेवा में जगन्नाथ की सेवा एक ही परिवार के लोग करते हैं, पीढ़ी से। बलदेव की सेवा भी ऐसी होती है, सुभद्रा जी की सेवा भी ऐसी होती है, और ख़ास रूप में जब वो रथ में बैठते हैं तो एक विशेष जाति है, दायित्वपति बोलते हैं। वो रथ में बैठने से, रथ चलाने से, रथ के बाद में जो सेवा होती है, फिर वापस लौट के आते हैं, तब तक सारी सेवा जो है दायित्वपति करते हैं। इस प्रकार से एक जाति शबर जाति भी है, वो भी भगवान की विशेष सेवाएँ करती है। एक और ऐसी जाति है जो भगवान का विग्रह जब समाप्त होने का समय होता है, वो भी एक लीला है भगवान की। तो जगन्नाथ की मूर्तियाँ बनाने के लिए जो लकड़ी लाते हैं वो भी एक ही परिवार के लोग करते हैं। ऐसे जगन्नाथ की बहुत अद्भुत सेवाएँ हैं, और उनकी सेवा जो है वो साख्य भाव में होती है, यानी कि उनमें कोई हम जैसे सेवा करते हैं। हमारे मंदिरों में हरि भक्ति विलास, नारद भक्ति सूत्र, इन पे आधारित जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार भगवान के विग्रहों की पूजा होती है, और वो ऐश्वर्य भाव में होती है, यानी कि लक्ष्मी नारायण के भाव में होती है। हम राधा कृष्ण मूर्ति की सेवा करते हैं, जरूर जगन्नाथ की भी सेवा करते हैं, लेकिन उनका भाव जो है, वो तरीका जो है, पद्धति जो है, वो ऐश्वर्य भाव में होती है। हम जाके भगवान को अपने हाथ से ऐसे मुँह में से नहीं खिलाते, ऐसे रोटी निकाल के ऐसे, उसका एक तरीका होता है जिसको वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ की जो सेवा है वो सखा भाव में, जब जाएंगे रथ यात्रा में तो जगन्नाथ जी ऐसे खड़े हैं तो उनके पंडा लोग उनके हाथ पे ऐसे हाथ रखे खड़ा रहते और बात करते रहते हम बोले ऐसे कैसे सेवा करते भगवान का, ये तो भगवान है स्वयं। लेकिन भगवान को ऐसा अच्छा लगता है क्योंकि भगवान ने खुद उनको स्वीकार किया अपने सेवक के रूप में, और सखा भाव में वो उनसे सेवा स्वीकार करते हैं। तो ऐसे ही एक बार रामानुजाचार्य जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, वो एक योग्य संप्रदाय के अधिकारी पुरुष हैं, उनके पूरे जीवन में, उनके पूरे लीला में रामानुजाचार्य ने जगह जगह जाकर बहुत सुंदर तरीके से अर्च विग्रहों की जो पूजा पद्धति है उसको स्थापित किया। जहाँ जहाँ भी गए, वो साउथ इंडिया में खास करके आप जाएंगे, श्रीरंगम में जाएंगे, तिरुपति जाएंगे और रंगनाथ जी जाएंगे, वो सब मंदिरों में, वरदराज का मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर वहाँ पर है जहाँ पर रामानुजा आचार्य के द्वारा स्थापित कई पद्धति का अभी भी लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसे ही घूमते घूमते लीला करते करते रामानुजाचार्य जो है वो जगन्नाथपुरी पहुँचे। जब जगन्नाथपुरी पहुँचे तो देखा कि अरे तो यहाँ पर तो बिल्कुल जो मन मर्जी हो रहा है जब चाहे भगवान को भोग खिला रहे हैं, कोई समय की पाबंदी नहीं है, जब चाहे उनको नहला रहे हैं, जब चाहे उनको जो चाहे वो खिला रहे हैं, जैसे भी उनकी मर्जी हो, सुलाने का समय, उठाने का समय, एकदम स्पॉन्टेनियस है, उत्स्फूर्त। तो उनको सब अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि ये सब गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कलयुग में भगवान की पूजा करने की पद्धति है, उस प्रकार से होना चाहिए। तो उन्होंने सब पंडाओं को बुलाया, वो बड़े आचार्य थे, वो बड़े सम्मानित थे, तो सम्माननीय थे बड़े वो, तो उनके लिए सब आए, सब सुने, उन्होंने बैठ के उन्होंने बताया कि ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, सब तरह से उनको समझाया, और अगले दिन से भगवान की जो पूजा पद्धति है वो चेंज हो गई। तो सबको अच्छा लगा कि भाई अरे बड़े बड़े आचार्य आ गए हमारे धाम में, आपको उन्होंने बहुत बड़ा ज्ञान दिया, अभी हम भगवान की सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। सबको अच्छा लगा, एक व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, वो कौन थे? स्वयं जगन्नाथ भगवान। उनको अच्छा नहीं लगा, उनको लगा कि हमारा जो रस था हमारे भक्तों के साथ में, जो रस का अनुभव हम कर रहे थे, वो सब भंग हो गया। अभी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिए, विधि निषेध नियम सब डाल दिए, इसकी वजह से मेरा जो अनुभव था मेरे भक्तों के साथ में सब खत्म हो गया। तो रात में वो सपने में आए रामानुजाचार्य के। रामानुजाचार्य जगन्नाथपुरी में विश्राम कर रहे थे, उनके सपने में आए, उनको बहुत डांटा उन्होंने कि आपने क्या समझते हो, आप कि बड़े विद्वान पंडित हो ताकि जगन्नाथपुरी मेरे भक्तों को सिखाने को आए हो, मुझे वही पसंद है जो पहले करते थे। तो उनकी थोड़ी सी बातचीत हुई, बहसें हुई, बातचीत हुई, तो जगन्नाथ भगवान ने उनको एक लात मार दिया। वो सीधा उड़े हवा में से, और जब सुबह उठे तो उन्होंने अपने आप को विशाखापट्टनम में पाया जहाँ पर सिंगाचलम नाम का जगह है, जहाँ पर नरसिंह भगवान ने अविर्भाव होकर बहुत सुंदर लीला की थी। 9 नरसिंह भगवान के विग्रह हैं वहाँ पर, अलग अलग, पाना नरसिंगा, हाँ, योगा नरसिंगा, उग्र नरसिंगा, वराहा नरसिंगा, ऐसे बहुत 9 प्रकार के विग्रह हैं। और वहाँ पर एक और भी स्थान है, इसका नाम है कुर्म क्षेत्र, जहाँ पर भगवान ने कुर्म का अवतार लेकर वहाँ पर लीला किया था। तो उन्होंने अपने आप को सुबह जब वो उठे तो अपने आप को कुर्म क्षेत्र में पाया, उसी जगह के अंदर। तो उन्होंने वहाँ पर अपना काम शुरू किया और वहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से कुर्म भगवान की जो अर्चा विग्रह पूजा पद्धति है उसको स्थापन कर दिया। लेकिन भगवान ने उनको जगन्नाथपुरी से बाहर कर दिया ऐसा भगवान लीला करते हैं। मतलब वो इस लीला के द्वारा अपना जो प्रेम है जगन्नाथ, उनकी जो पुजारियों के द्वारा जो प्रेम है उनका, उसको भी व्यक्त करते हैं और रामानुजाचार्य के भी प्रेम प्रकट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो उनका प्रेम नहीं करते, उनका अपना अपना सेवा दिया उन्होंने, उनको उन्होंने खुद ही दिया था सेवा उन्होंने, लेकिन उन्होंने बता दिया कि मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, उससे लत्ता प्रहार करके उनको और जगह भेज दिया। और एक ऐसी लीला है कि वृषभानु महाराज जो राधा रानी के पिताजी हैं, वो चैतन्य महाप्रभु लीला में उन्होंने अवतार लिया। उनका नाम था पुंडरीक विद्यानिधि। वो बड़े विद्वान थे, बड़े विद्वान, उनको भी ऐसा ही बहुत सारा ज्ञान था भगवान के विग्रहों के बारे में वगैरह। तो अभी किसी भी मंदिर में आप जाएंगे ना, कहीं भी बहुत अच्छा मंदिर जो हमारे पूजा पद्धति अच्छी पद्धति होती है, तो वहाँ पर कभी भी वो कांजी लगाया हुआ कपड़ा होता है ना, नया नया कपड़ा, जब आप कोई साड़ी लेके आएंगे, कोई धोती लेके आएंगे, तो एकदम कड़क होती है वो, उसमें कांजी लगी होती है, तो वो कांजी को धोए बिना भगवान के सेवा में उसको उपयोग नहीं करते हैं। ये सब जगह नियम है, हाँ, धोने के बाद भी उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में ये नियम नहीं है। तो वो जो भी भगवान के लिए दुपट्टा लेके आए सीधा पुजारी ने, इसने दिया हो, पुजारी ने सीधा उसको खोल के जगन्नाथ पर डाल दिया। तो पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छा नहीं लगा, उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है, गलत बात है, ये आपको धोना चाहिए और धोने के बाद में, सुखाने के बाद में उसको लगाना चाहिए। तो फिर उन्होंने तुरंत ऐसा किया, तुरंत निकाला उसको, धोया और फिर दूसरे दिन सुबह के उसको लगाया। बहुत बढ़िया काम हुआ, तो ज्ञान मिला अच्छी तरह से, लेकिन गड़बड़ हो गया। उस रात में फिर जगन्नाथ जी पुंडरीक विद्यानिधि के सपने में आए और उनको बलराम जी और जगन्नाथ दोनों सपने में आए, दोनों तरफ से आए, और से लाल लाल आँखें गुस्से में भरी हुई, और उन्होंने यहाँ से मुक्का मारा और उन्होंने वहाँ से मुक्का मारा, और दोनों तरफ से उन्होंने पुंडरीक विद्यानिधि को बोलने का मौका भी नहीं दिया। यहाँ से और वहाँ से उनके गाल पर इतने ज़ोर से गुस्से मारे कि उनके ऐसे गाल फूल गए, ऐसे उनको बोलने जैसा भी मुँह रह गया। तो नेक्स्ट डे वो उठे तो सब लोग पूछने लगे क्या हुआ, तो बोल ही नहीं पाए क्या हुआ, क्योंकि मुँह ऐसा बंद हो गया था उनका खुल के पूरा। काफ़ी दिन के बाद में उन्होंने बताया क्या हुआ, बोले इसके आगे मेरे भक्तों को कुछ समझाने की कोशिश मत करना, जो भी वो कर रहे हैं मुझे पसंद है और वही मैं चाहता हूँ कि होता रहे। ऐसे हमारे जगन्नाथ भगवान जो है उनका कैसा है ना कि वो एकदम, दो प्रकार की भक्ति होती है, एक भक्ति होती है वैदी भक्ति और एक भक्ति होती है रागानुगा भक्ति। साधना भक्ति के दो अंग होते हैं, एक होती है वैदी, मतलब विधि पूर्वक विधि के अनुसार निषेधों को पालते हुए, उसको कहते हैं वैदी भक्ति, वो नीति नियम के साथ में करते हैं उसको। और एक होती है रागानुगा भक्ति, उसके आगे होती है भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो रागानुगा मतलब क्या है, स्पॉन्टेनियस, मतलब उत्स्फूर्त, जो पहले बहुत मुश्किल से किया जाता है वही चीज़ बाद में बहुत बड़े प्रेम से अपने आप ही की जाती है, और उत्स्फूर्तता में फिर नियम नहीं होते हैं। जैसे कि हमारे जानकारी में एक भक्त हैं, वो उनका नाम है घनश्याम दास बाबा, हमारे महाराज जी के बड़े पुराने मित्र हैं। वो ऐसे स्टेज पे थे रागानुगा भक्ति, वो क्या करते थे, उनके विग्रह थे राधा गोपीजन वल्लभ, जो जमुना जी के रेत से वो प्रकट हुए थे। एक बार वो जमुना जी के रेत में ऐसे हाथ से राधा राधा लिख रहे थे, ऐसे लिखते थे और निकालते थे, फिर लिखते थे फिर निकालते थे। जब एक बार उन्होंने ऐसा निकाल दिया तो उनको हाथ में ऐसा कुछ लगा, तो उन्होंने उसको थोड़ा देखा तो ऐसे कुछ टोकदार वस्तु थी, तो और खोला तो गोल वस्तु थी, और खोला तो मानो पड़ा कि वो मुकुट था किसी व्यक्ति का और नीचे सर भी है, तो और खोला तो दो मूर्ति दिखाई दी, और पूरा खोल दिया तो राधा गोपीजन वल्लभ नाम लिखे हुए नीचे से दो विग्रह प्रकट हुए। तो तब से उन्होंने उनका सेवा कभी छोड़ा नहीं। तो वो घनश्याम बाबा जो है वो रोज़ कुछ बनाते थे और ऐसे हम चपाती चपाती तोड़ते ना, चपाती तोड़ के फिर सब्जी लगाते, जैसे राधा के मुँह में दे देते, फिर निकालते थे, फिर एक बना के कृष्ण के मुँह में दे देते, फिर रखते थे, फिर लड्डू निकालते थे, फिर कृष्ण के मुँह में देते, फिर रखते थे। ऐसे वो सेवा करते थे जो हम लोग उसका नकल नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस भाव में थे, वो आँखों में आंसू लेकर उनसे बातें करते करते उनको खिलाते थे। उसे कहते हैं रागानुगा भक्ति। तो भगवान जो है जगन्नाथपुरी में उनका विशेष भाव है कि अपने मित्रों से, जब मित्र लोग मिलते हैं तो कोई नियम पालन करते क्या? अरे ऐसे बैठ के खिलाना चाहिए, कभी वो मस्ती करेंगे, कभी जूठा खींच के खाएंगे। हमने सुना ना कृष्ण भगवान की लीला में, जब जमुना किनारे भगवान बैठते थे तो किसी के मुँह से छिन के खा रहे हैं, किसी वो उनके मुँह से छिन के खा रहे हैं, कोई चोरी करके खा रहे हैं, कोई भाग भाग के खा रहे हैं, कोई उनके पीछे भाग रहे हैं फिर खा रहे हैं, कोई जल्दी जल्दी लस्सी पी रहे हैं तो मुँह में भर के लस्सी में गुलचा मार रहे हैं, तो मुँह से जो बाहर निकल रहा है उसको भी हाथ में लेके पी रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा जी देख रहे भाई आश्चर्य हो गए, अरे ये क्या भक्ति होती है, हम तो बड़े ओम नमो नारायणाय बड़े मंत्र बोलते हैं, घंटी बजाते हैं और फिर भोग लगाते हैं, ये तो वही भगवान है, वो तो ऐसे कैसे खा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो साक्ष्य भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे जगन्नाथ का वहाँ पर भाव है कि वो अपने अपने भक्तों के प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जगन्नाथ भगवान जो है उनकी अनेक कथाएं हैं, विचित्र कथाएं हैं। उसमें एक कथा ऐसी है कि 1435 साल में एक राजा हुए जगन्नाथपुर में, आज भी वो परंपरा चल रही है, उन्हें कहते हैं गजराज। गजराज मतलब जो उड़ीसा राज्य है उसका जो राजा है उसके आधिपत्य में जगन्नाथपुरी का मंदिर और उसकी सेवा हुआ करती थी। जैसे आज भी अगर आप सऊदी अरब में जाएंगे तो सऊदी अरब का जो राजा है उसी के अधिकार में मक्का मदीना की मस्जिद का अधिकार दिया गया है। उसका नाम ही है कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क, ऐसा उसका टाइटल है, किंग सऊद और किंग फहद और किंग जो भी कुछ है। तो वैसे ही आज भी वो प्रथा चलती आ रही है, जो गजराज राजा है उसको गजपति बोलते हैं, गजराज बोलते हैं। तो फिर गजराज कपिलेंद्र देव, गजराज पुरुषोत्तम देव, गजराज प्रजापुत्र देव, ऐसे उनके नाम होते हैं। तो 1435 साल में एक राजा थे, उसका नाम था राजा पुरुषोत्तम देव, गजराज राजा पुरुषोत्तम देव। वो कपिलेंद्र देव के पुत्र थे जो उनके पहले राजा थे। तो उनके यहाँ पर प्रथा थी, आप जानते हैं ना कि वो रथ के सामने झाड़ू लगाते। तो एक बार बहुत राजा बहुत भक्त थे भगवान के, शुद्ध भक्त थे और क्षत्रिय थे। तो उस समय उड़ीसा का राज्य था वो कर्नाटक तक पहुंचा हुआ था, कर्नाटक के आगे जाकर भी उड़ीसा का राज्य था उस समय। तो एक बार राजा अपनी सेना को लेकर दिग्विजय करने के हेतु से चले गए दक्षिण दिशा में और कांची तक पहुँचे। कांची तो आंध्र प्रदेश के अंदर आता है, तिरुपति के भी आगे आता है कांचीपुरम। तो कांची के राजा थे सालवो नरसिंह राजा। तो वो जब आक्रमण करते हैं पुरुषोत्तम देव तो देखते हैं कि अरे इतना बड़ा तपस्वी भगवान का भक्त राजा है, नीति संपन्न है, इतना आदर्श राजा है, तो हम उसे युद्ध नहीं करेंगे, हम उनको तुरंत सलह कर देंगे, तुरंत उसके साथ सुलह कर देंगे। तो युद्ध के बिना वो मिलते हैं और बड़े आदर से उनको कहते हैं कि हम आपसे बड़े प्रसन्न हैं, हम आपकी मित्रता चाहते हैं। तुरंत वो एग्री हो जाते हैं और कहते हैं कि मित्रता के रूप में आप इतने सर्वगुण संपन्न राजा हो, हमारी कन्या आपको हम पत्नी के रूप में देना चाहते हैं। तो उन्होंने तुरंत स्वीकार कर लिया उसको, लेकिन विवाह नहीं हो पाया क्योंकि उस समय रथ यात्रा बहुत पास में थी। तो राजा ने कहा कि अभी हम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं लेकिन विवाह का जो समारंभ है उसको बाद में करते हैं। और तुरंत वो लौट के जाते हैं जगन्नाथपुरी में। और उस समय जगन्नाथपुरी उस समय जब ही वो पहुंचते हैं तो वो कहते हैं कि अभी हमारी रथ यात्रा है, तो आप अभी हमारे नए समधी हैं, तो आप हमारे लिए रथ यात्रा में आइए, हम आपको निमंत्रण देते हैं। तो राजा जो है वो जो सालू नरसिंह राजा है वो स्वयं नहीं जाता है, वो अपने एक मंत्री को भेजता है अटेंड करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में। तो बड़े उत्सव के साथ में रथ यात्रा मनाई जाती है और इस समय राजा आज्ञा देता है कि इस समय मेरे जो होने वाले समधी हैं उनके तरफ से मेहमान भी आने वाले हैं, तो बहुत धूमधाम से उसको मनाया जाए। तो बड़ी धूमधाम से रथ यात्रा मनाई जाती है। तो वो जो मंत्री आया था नरसिंह राजा का मंत्री, उसको सब अच्छा लगता है बहुत, इतना बढ़िया उत्सव, इतना भव्य उत्सव, इतने ही भक्त लोग, सब लोग सब जगह फैले हुए हैं। लेकिन एक बात उसको अच्छी लगती नहीं कि राजा स्वयं रथ के सामने आकर झाड़ू लगाता है, ये उनको अच्छा लगा नहीं। ये क्षत्रिय का राजा है तो शूद्रों का काम क्यों करता है, ये तो चांडाल लोग करते हैं सब। तो वो जब वापस गए अपने राज्य में राजा के पास, तो उन्हें सब रिपोर्ट दिया कि एवरीथिंग वॉज नाइस, सब बहुत बढ़िया था, लेकिन मुझे वे राजा स्वयं अपने हाथ में झाड़ू लेकर झाड़ू बांधने का काम जो है वो मुझे पसंद नहीं आया। तो राजा को भी वो बात सही लगी कि हाँ ये बराबर नहीं है। तो वो क्या करते हैं, एक खत लिखते हैं राजा पुरुषोत्तम देव को कि बहुत बहुत बढ़िया हुआ, उत्सव अच्छा हो गया, लेकिन खेद की बात यह है कि आप वहाँ झाड़ू लगाते हैं और हमारी कन्या का विवाह हम किसी शूद्र के साथ नहीं करना चाहते, इसलिए विवाह हम रद्द कर देते। इस तरह से वो खत पहुँचता है। तो राजा को बहुत गुस्सा आता है, बहुत अपमान होता है उसको, अरे मैं जगन्नाथ की सेवा कर रहा हूँ स्वयं, और मुझे इस तरह से किया वो वादा जो है वो तोड़ रहे हैं। हम लोग राजा हैं, हमारे लिए शब्द का कितना मान होता है, हम क्षत्रिय हैं, हम अपमान सहन नहीं करते, इसलिए उसको बहुत गुस्सा आता है। तो तुरंत वो सेना को लेकर आक्रमण करने चलता है कांचीपुरम पर, बड़े क्रोध से निकलता है। लेकिन जब वहाँ पहुँचता है तो बहुत घमासान युद्ध होता है, लेकिन उस युद्ध में राजा पुरुषोत्तम देव को पराभव स्वीकार करना पड़ता है और कुछ ही गिने चुने सैनिक बचते हैं, सब लोग मारे जाते हैं। राजा बाल बाल बच के, जान बचा के वहाँ से भाग निकलता है। जब वो भाग के निकलता है तो बीच में रास्ते में उसको बहुत दुख होता है कि अरे जगन्नाथ के अपमान के लिए मैंने युद्ध किया और फिर भी मैं परास्त हो गया और सेना भी ख़त्म हो गई और मैं जान बचा बचा के भाग गया। तो बीच में वो जंगल में रुक जाता है। वहाँ पर एक ऋषि का आश्रम होता है, उसका नाम है शैकट आचार्य। तो वो शैकट आचार्य के आश्रम में जाके जाते हैं, विश्राम लेते हैं और मुनि को अपने हृदय के दुख बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। तो जो मुनि थे वो जगन्नाथ के बड़े भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि अरे राजा आपने इतना बड़ा आक्रमण किया, क्या जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके आज्ञा लिया था क्या जाने के पहले? तो नहीं नहीं मैं तो बहुत क्रोध में था, मैं सब भूल गया, बिल्कुल क्रोध में मैं निकल गया वहीं से। हाँ ये मेरी गलती हो गई, मैं जगन्नाथ जी से आज्ञा नहीं लिया, हमेशा मैं राज्य के बाहर निकलते समय जगन्नाथ की वंदना करता हूँ, उनकी चरणों में जाकर फिर अपना कार्य में आगे बढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप जाओ राज्य में जाके विश्राम करो। जैसे वो राज्य में प्रवेश करते हैं जगन्नाथपुरी में, सबसे पहले मंदिर में जाते हैं जगन्नाथ के, वो बहुत रोते हैं वहाँ पर जाके कि जगन्नाथ जी ऐसे हमने क्या कुछ गलती किया, हमने आपका दर्शन नहीं किया, माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आपके लिए हमने ये किया था, आपका अपमान हुआ क्योंकि आपका सेवक के रूप में हमने झाड़ू लगाया था, तो ऐसे चांडाल के रूप में हमको पुकारा गया। तो बहुत देर तक रोते हुए राजा वहाँ से निकल ही नहीं रहे थे, शयन का समय हो गया, मंदिर बंद हो गया, पर्दा भी खिंच गया, पट बंद हो गए, फिर राजा वहीं बैठ कर रोते रहे। सब लोग चले गए, पुजारी सब लोग चले गए, राजा अकेले बैठ कर रोते रहे वहाँ पर। सब जाने के बाद में जो मंदिर का गर्भस्थ गर्भगृह था वहाँ से घन गंभीर आवाज़ आई, अरे अरे राजा पुरुषोत्तम इतना क्यों खेद करते हो, छोटी सी बात के लिए खेद करते हो, कोई बात नहीं, फिर अपने सेना को इकट्ठा करो और फिर आक्रमण करो, इस समय हम आपके साथ चलेंगे अपने भाई को लेकर। तो वाह उत्साह आ गया उनके अंदर। फिर दोबारा उन्होंने सैन्य को इकट्ठा किया और फिर मंदिर में गए, समय निकलने के पहले उनकी आज्ञा लिया, लेकिन उनके मन में थोड़ा शंका था कि अरे जगन्नाथ ने कहा तो है लेकिन क्या आएंगे क्या वो, हाँ पता नहीं कैसे रूप में आएंगे, क्या आएंगे, आएंगे कि नहीं, क्या याद रहेगा उनको कि मैं सांत्वना करने के लिए केवल उनको ऐसे बताया था, मतलब बहुत सारे विचार मन में ऐसे ऐसे आ रहे थे। और सेना निकल पड़ती है, सब जाते हैं कांची की ओर। तो बहुत सेना के आगे एक गाँव है, वहाँ पर एक मणिका नाम की भक्त थी, बहुत बूढ़ी भक्त थी, जगन्नाथ की भक्त थी वो, और वो छाछ बेचती थी रास्ते पर। तो दो घोड़े आते हैं, एक काला और एक घोरा, काले घोड़े पर गोरा व्यक्ति और गोरे घोड़े पर काला व्यक्ति, सैनिक के रूप में ऐसे पूरा सज्ज, सब ये जो क्या कहते हैं उसको कवच कुंड पहन के, सब राजा के वस्त्र में शस्त्र लिए हुए वो आते हैं और वो मणिका के पास आते हैं। मणिका को बोलते हैं, मणिका बहुत प्यास लग रही है, बहुत दूर से हम लोग आ रहे हैं युद्ध के लिए जा रहे हैं, तो हमको कुछ पिलाओ। तो वो छाछ पिलाते हैं उनको, बहुत खूब छाछ पीते हैं वो सब प्यास के मारे, और फिर बोलते पैसे दो। तो बोलते हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे राजा जो हैं वो पीछे से आ रहे हैं सेना लेकर, उनसे आप पैसे ले लेना, अभी फ़िलहाल मेरी जो अंगूठी है वो रखना और राजा को दिखाना कि ये अंगूठी वापस करके पैसे ले लेना उनसे आप। तो वो ठीक है, उस समय तो इतना ज़माना था, बहुत नेकी का ज़माना था, ऐसे तो बुद्धि का लेकर वो भाग जाते थे। तो बहुत देर के बाद सेना आती है वहाँ पर। तो सेना के आने के रास्ते पर वो हाथी जो सेना जो है ना, राजा पुरुषोत्तम देव हाथी पर जाते रहते हैं, तो अरे रास्ते में एक औरत ऐसे 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 करके उनको रुकाने का प्रयास करते, तो वो रुक जाती हैं, बोलते क्या माता जी क्या बात है, बोलते आपके दो सैनिक आए थे, उन्होंने बहुत सारा छाछ दिया, उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने ये मुद्रिका दिया है, ये मुद्रिका आप रख लीजिए और मेरा पैसा जो आप दे दीजिए। तो देखते तो क्या है, रत्न मुद्रिका, स्वयं जगन्नाथ के हाथ की रत्न मुद्रिका जो मंदिर में पहनते हैं जगन्नाथ जी को, वो उनके हाथ में रत्नों से भरी हुई मणिका चमक रही है बिल्कुल। तो राजा एकदम गदगद हो गए भाव से, वो समझ गए कि मैंने शंका किया था कि कृष्ण बलराम आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन स्वयं कृष्ण बलराम हमारे आगे ही पहुँच चुके हैं, आगे ही जा चुके हैं। तो वो छास के कीमत के रूप में उनको एक गाँव दे देते हैं। आज भी वो गाँव वहाँ पर है, मणिकापटना, मणिकापटना नाम के फेमस गाँव हैं साउथ इंडिया के रास्ते पर है। वो मणिका को उन्होंने दे दिया भेंट के रूप में, और उस युद्ध में घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने कहीं जगन्नाथ को बलराम को देखा नहीं, लेकिन उस युद्ध में उनकी अचानक विजय हो गई, एकदम बहुत जोरदार विजय हो गई। हाँ, तो इस तरह से उनको यकीन हुआ कि, और फिर वो युद्ध में जब जीतते हैं तो वो जितना भी, सब ऐसा नियम है ना युद्ध में, जब जीतते हैं तो सभी संपत्ति है सब तुम्हारी हो जाती है, आप कहीं भी जाओ कुछ भी लूटो और अपने राज्य में ले जाओ विजय के रूप में, तो सब वो लेते हैं सब संपत्ति वगैरह। और साथ साथ में जो राजा की कन्या है जिसका विवाह उनके साथ होने वाला था उसको भी लेते हैं, और अपने मंत्री को बोलते हैं, मुख्यमंत्री को, इसको तुम ले जाओ। और राज्य में पहुँचते हैं और मंत्री को आदेश देते हैं कि ये जो कन्या है इसको एक सुसंस्कृत झाड़ू वाला जो है उसके साथ विवाह कर देना इसका। बहुत कल्चर्ड, जो भी अच्छे घराने से बहुत सुशिक्षित और अच्छे तौर तरीके जानने वाला जो भंगी होगा उसका विवाह इसके साथ कर देना। अभी देखो राजकुमारी है, वो भी क्षत्रिय क्षत्राणी है, लेकिन अभी वो हारे हुए राजा की कन्या है तो क्या कर सकती है। तो जो मंत्री होता है वो अपने घर में रखता है उसको, एक साल तक रखता है घर में आपके, फिर अगले साल रथ यात्रा आती है, और फिर पहंडी विजय, मतलब पहंडी विजय मतलब क्या होता है कि भगवान को अपने मंदिर से उतार कर, वेदी से उतार कर झुलाते हुए लाते हैं ना और रथ में विराजमान करते हैं, उसको कहते हैं पहंडी विजय उत्सव। वो हो जाता है, उसके बाद में उत्सव क्या होता है, चेरा पहारा उत्सव। चेरा पहारा मतलब झाड़ू लगाने का उत्सव। तो उस समय राजा पुरुषोत्तम देव फिर वहाँ पधारते हैं और झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगाने का सब काम चालू रहे, सब लोग देख रहे हैं, उनको ध्यान रहे हैं। उस समय ये मुख्यमंत्री पद्मावती कन्या को बहुत दुल्हन बनाकर लेके आते हैं और सबके सामने ऐलान करते हैं कि राजा ने मुझे आज्ञा दिया था कि इस राजकन्या का विवाह एक सुसंस्कृत और अच्छे झाड़ू वाले के साथ किया जाए, और आज मेरे सामने सबसे बढ़िया झाड़ू वाले जो है राजा पुरुषोत्तम देव हैं, इसलिए मैं इनका विवाह इसमें इनके साथ करने का ऐलान कर देता हूँ। तो भरी जनता के साथ में राजा का विवाह पद्मावती के साथ में हो जाता है, और आपको सुनकर बड़ी खुशी होगी कि पद्मावती रानी और राजा पुरुषोत्तम देव, इनका पुत्र था राजा प्रताप रुद्र, इनके पुत्र के रूप में राजा प्रताप रुद्र ने जन्म लिया। और उनकी कथा आप जानती हैं कि चैतन्य महाप्रभु के समय उन्होंने कैसा लीला किया और राजा भगवान का दर्शन करने का प्रयास किया, भगवान की सेवा की। हाँ, रामानंद राय को गवर्नर के जॉब से फ्री कर दिया और कहा कि आप जाइए भगवान की सेवा में रहिए, मैं आपकी तनख्वाह हर महीने देते रहूँगा बिना काम के, उसके बाद पेंशन भी देते रहूँगा, आप जगन्नाथ भगवान अपने चैतन्य महाप्रभु की सेवा करो। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए थे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने उनके पुत्र को गले लगाया अपने, फिर भी दर्शन उनको नहीं दिया। फिर जब प्रताप रुद्र महाराज ने रथ के सामने झाड़ू लगाया नम्र होकर कि मुझे राजा बनने से क्या लाभ है, कि राजा बनने से भी अगर मुझे भगवान का दर्शन नहीं होता है तो राजा बनने का मतलब क्या है, राजा बनने से क्या लाभ है मुझे, इससे अच्छा मैं भंगी बन जाऊंगा भगवान के लिए अगर भगवान मुझे अपनी कृपा करने को तैयार हैं तो, इस भावना से उन्हें झाड़ू लगाया। तब चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर के कान में बताया कि अभी बहुत जल्द ही श्री कृष्ण भगवान इन पर कृपा करेंगे। और उसी समय जब भगवान ने सात रूप में, सात गट में, सात विभाग में, अलग अलग रूप में भगवान ने कीर्तन किया सात रूप धारण करते हुए, वो केवल स्वरूप दामोदर और राजा प्रताप रुद्र ये दो दोनों व्यक्ति देख पाए उसको। और स्वरूप और वो एक भक्त वहाँ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो बीच में खड़े थे, राजा प्रताप रुद्र भाव विभोर होकर देख रहे थे, तो वो भक्त के बीच में प्रताप रुद्र खड़े थे और वो भक्त को चैतन्य महाप्रभु नजर नहीं आ रहे थे, तो वो भक्त जो है वो भी एकदम आतुर थे भगवान को देखने के लिए, वो देखने लगे राजा खड़े मेरे बीच में, राजा को एक जोरदार तमाचा मार देते हैं, हटो माजो यहाँ से, इनको देखना है, दर्शन करना है। तो स्वरूप दामोदर जी कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यवान हो कि तुम्हें इस भक्त के हाथ से चाटा मारा है। और जैसे ही ये होता है तो तुरंत चैतन्य महाप्रभु के सात रूप के दर्शन राजा प्रताप रुद्र को होते हैं और वो भाव विभोर हो जाता है। फिर महाप्रभु नाचते नाचते आते हैं तो उनके भाव में आंसू जो है वो ऐसे पिचकारी की तरह बहते रहते हैं, वो सारे आंसुओं से राजा प्रताप रुद्र भी बिक जाते हैं। तो ये राजा प्रताप रुद्र पुरुषोत्तम देव और पद्मावती रानी के पुत्र थे। ऐसी अद्भुत घटनाएँ इसमें जगन्नाथपुरी में हैं। जब स्नान यात्रा जगन्नाथ की होती है ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन, हाँ ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा आती है, तो वो दिन जगन्नाथ का आविर्भाव दिवस है, जिस समय विश्वकर्मा के हाथ से वो मूर्तियाँ उसको लग रही थी कि आधी हो गई है, बहुत पूर्ण हो गई थी। उस दिन राजा इंद्रदुम्न ने उसको भरी जनता में वेदी पर रखकर उनको स्नान कराया था भगवान को। वो जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस है। तो उस आविर्भाव दिवस के लिए एक दिन एक गणपति भट्ट नाम के जो कर्नाटक के गणेश भक्त थे, वो स्नान यात्रा देखने के लिए जगन्नाथपुरी आए। तो जगन्नाथपुरी जब आए तो उनको लगा, अरे मैंने तो सुना है कि ये जगन्नाथ भगवान जो है वो सभी जितने भी अवतार हैं, एतेच अंशकला पुम सकृष्णस्तु भगवान स्वयं, सभी जितने अवतार हैं, विस्तार हैं, जितने भी देवता हैं, सबके उगम ये जगन्नाथ भगवान हैं, और मेरे गणेश जी मुझे नहीं दिखाई पड़ रहे यहाँ पर। अगर वास्तविक अगर जगन्नाथ सब देवताओं के स्रोत हैं, उगम हैं, तो मुझे दिखने चाहिए मेरे भगवान, मैं जिनको पूछता हूँ। जगन्नाथ भी अंतर्यामी हैं, उनको भी अच्छा लगा, अरे अपने देवता से जो उनके इष्ट देव हैं, कितना बढ़िया प्रेम है उनको, हाँ कहीं भी आए तो अपने इष्ट देवता को नहीं भूल रहे हैं। जगन्नाथ जी को अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, तो इनको गणेश जी का दर्शन देते हैं। तो जैसे ही वो आया, और वही से सोच रहा था मन में ऐसे ऐसे, अचानक उनके सामने जगन्नाथ की सूंड निकल आई, बलदेव की भी सूंड निकल आई, और जगन्नाथ बलदेव दोनों ने उनको गणेश रूप में दर्शन दिया। तब जाके तुरंत उन्होंने दंडवत प्रणाम किया गणपति भट्ट ने। तो उसको कहते हैं हाथी वेश, और आज भी ये हाथी वेश जो है, ये स्नान यात्रा के दिन, स्नान यात्रा होने के बाद में जगन्नाथ भगवान को करते हैं। अब इस साल हम गिरधारी मंदिर में गए हैं ना, स्नान यात्रा के बाद दोपहर के बाद में शाम तक हाथी वेश जो है चलता रहा, और उसके बाद में जगन्नाथ जी 15 दिन तक दर्शन देते नहीं हैं। तो भुवनेश्वर के हमारे इस्कॉन के मंदिर में, यहाँ के गिरधारी मंदिर में, और कई जगह पर इस्कॉन के मंदिरों में, और ख़ास करके जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में भगवान इस भक्त की याद में हर रोज़ हर साल एक दिन हाथी वेश धारण करते हैं। उनका बड़ा श्रृंगार भी होता है, रोज़ उनका सुबह 8 बजे श्रृंगार आरती होती है। तो एक विशेष उसका एक फॉर्मूला है, जगन्नाथ जी का विशेष शास्त्र जो है उसके अंदर वो दिया है, उस प्रकार हर रोज़ वो बड़ा श्रृंगार होता है सुबह 8 से लेकर रात तक। और ये जब हाथी वेश होता है तो सुभद्रा जी को कमल वेश करते हैं, उनको बहुत कमल के फूलों से सजाते हैं, तो उसको कहते हैं कमल का और नाम क्या है, पद्मावेश। तो पद्मावेश से सुभद्रा जी को श्रृंगार करते हैं, और हाथी वेश से बलदेव और जगन्नाथ को श्रृंगार करते हैं। और मैं आपको बताया था कि शूनावेश उनका एक विशेष अवतार है, विशेष रूप है। हाँ शूनावेश में क्या होता है याद है आपको, बताया था मैंने, जब जगन्नाथ जी लौट कर आते हैं रथ यात्रा करके, उसके पहले पंचमी के दिन उनकी प्रिय पत्नी लक्ष्मी देवी बड़े क्रोध में आकर वहाँ पहुँचती है कि भाई बहन को लेके गए, मुझे नहीं लेके गए, मुझे पूछा भी नहीं, बताया भी नहीं, चले गए, जहाँ के देखती हूँ क्या होता है। तो जाती है बहुत गुस्से से अपने पंडाओं को सखाओं के साथ मित्रों को लेकर, वहाँ जाके खूब गालियाँ भक्ति है। वो जैसे ही मंदिर पहुँचती है जगन्नाथ जी दरवाज़ा बंद कर देते हैं, उनको एक हार भेजते हैं अपनी भेंट के रूप में, एक दर्शन नहीं देते हैं। तो जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश नहीं करती, वहाँ से ही गुस्से से लौट के आती है, जगन्नाथ का रथ वहाँ खड़ा है, उसके एक डंडा तोड़ देती है और चली जाती है, बोले अभी जब वापस लौट के आएंगे तो दिखाऊंगे बराबर से। तो जब लौटती है तो सारा जो चूल्हा है, 700 चूल्हे जो है जिसमें जगन्नाथ जी का भोग बनता है, 7200 किलो का चावल रोज पकता है, 56 भोग बनते हैं, ऐसा हमारा जो हॉस्पिटल का एरिया है, ऐसा पूरा किचन है उनका ओपन, सब तोड़ देती है। बोले जिस अन्न पर 56 भोग पर जगन्नाथ जी यहाँ पर निवास करते हैं उसका मूल ही मैं नष्ट कर दूंगी, सब नष्ट करते हैं और बैठ जाती है। 9 दिन के बाद में आनंद लेते हुए ब्रजवासियों के संग में लीला करते हुए बड़े मज़े से भगवान लौट कर आते हैं, लेकिन उनको क्या पता आगे क्या होने वाला है। उनको आनंद लेने में पता नहीं पीछे क्या हो रहा है। जब पहुँचते हैं जगन्नाथ जी के मंदिर में, अपने घर पहुँचते हैं, तो लक्ष्मी देवी आती है, बड़े गुस्से से खड़े रहती है, बहुत मना कर देती कि अभी आप मंदिर में आपको प्रवेश करने नहीं देंगे, जाइए आप जहाँ जा रहे हैं रहना है वहाँ रहिए, जहाँ प्रसाद पाना है वहाँ पाइए, हमने आपको अंदर प्रवेश कर देंगे। तो जगन्नाथ जी गिड़गिड़ाते हैं, ऐसे मूर्ति जो खड़ी ना ऐसे 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 गिड़गिड़ाते हैं, माफ़ कर लो, फिर नहीं करेंगे, अभी माफ़ कर लो, एक बार ले लो, लेकिन नहीं एक्सेप्ट नहीं करते। और दरवाज़ा बंद करती हैं, जैसे जगन्नाथ ने बंद किया वैसे वो खुद बंद करके पैर को धार करके लगे जमीन पर पटक के चले जाती हैं। आप सोच सकते हैं ना ऐसे चले जाते हैं। तो फिर जगन्नाथ के भक्त से लोग दुखी हो जाते हैं, अरे हमारे भगवान को अंदर नहीं लिया, सब सखा लोग परेशान हो जाते हैं। जगन्नाथ भी दुखी हो जाते हैं, अरे हमारी पत्नी ने हमको धुतकार दिया, तो क्या किया जाए। रात भर सोचते हैं, रात भर रथ में खड़े हैं, महाराज राज द्वारकाधीश रास्ते पर खड़े हैं, रथ में ही सो रहे हैं। तो फिर वो सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, तो बोले अभी भगवान को ऐसा वेश करेंगे, ऐसा श्रृंगार करेंगे कि लक्ष्मी जी को देखते ही उनकी हृदय पिघलना चाहिए, सब गुस्सा वुस्सा ख़त्म होना चाहिए। तो उसका वर्णन किया है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या क्या उनको पहनाते हैं और आज भी उनको कैसे पहनाते हैं उसको। उसको कहते हैं शूना वेश, मतलब वो जो भी पहनते हैं उस दिन वो सब सोने का होता है, वस्त्र भी सोने का, वस्त्र जो ऊपर का वस्त्र, उत्तरीय वस्त्र, अदरीय वस्त्र, दुपट्टा, सब चीज़ सोने का, अलंकार सोने का, पूरा मुकुट सोने का। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीनों का मिलके वो कहते हैं कि 1000 किलो से भी अधिक सोने का गहना हो जाता है। अभी देखिए स्त्री हस्त मतलब सोने के हाथ लगाते हो, और एक हाथ में भगवान के शंख देते हैं और चक्र देते हैं, शंख चांदी का होता है केवल और चक्र सोने का होता है, तो वो हाथ अलग और हाथ में दिया हुआ चक्र और शंख अलग। फिर बलदेव जी के हाथ में हल और गदा देते हैं और सोने के हाथ रहते हैं ऐसे उंगली वाले, उनको तो हाथ नहीं है ना, उंगली नहीं है लेकिन लगा देते हैं उनको। फिर श्री पायरा मतलब दो दो चरण जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी को दो दो चरण सोने के लगाते हैं, सॉलिड गोल्ड। उसके बाद में श्री मुकुटा तीनों को बहुत भव्य ऐसा जो है, देखिए यहाँ पर चित्रपट है आप देख सकते हैं, गोल पूरा ऐसे ऐसे शरीर से लेके ऐसे गोल, एक एक में एक एक गोला सोने का, उसके अंदर एक पॉइंटेड ऐसे, देखिए आप कैसे भगवान को इतना भारी होता है वो, तीनों के सर पे लगाते हैं। इसके बाद में श्री चूलापति यानी कि जो सर पे यहाँ पर एक बड़ा मणि होता है, आप जगन्नाथपुर जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, जब रथ में आते हैं तो इतना इतना बड़ा मणि होता है जो सर पे लगाते हैं जगन्नाथ के, इतना बड़ा मणि होता है, यहाँ बीच में होता है वो, और वो तीनों को लगाते हैं। इसके बाद में श्री कुंडल, तीनों को सोने के कुंडल लगाते हैं जो बड़े बड़े गोले की तरह से लटकते रहते हैं उनके यहाँ। फिर राहु रेखा ये नाम का अलंकार होता है जो, जिसको कहते हैं ऑरा यानी कि एफलजेंस, आपने देखा होगा मंदिरों में जब श्रृंगार करते हैं तो पीछे गोल लगाते हैं भगवान के पीछे, बहुत उसमें डेकोरेशन श्रृंगार फूल लगाते हैं, तो वो भी सोने का लगा देते हैं। उसके बाद में श्री शंख चक्र गदा पद्म, ये बता दिया मैंने आपको। श्री माला यानी कि अभी कितनी मालाएं देखो, पद्म माला, सेवती माला, अगस्ती माला, पारिजात माला, कदम्ब माला, कांति माला, मयूर माला, चंपा फूल माला, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के जितने भी फूलों की मालाएं हैं वो सोने के फूल के बनाते हैं माला, और ये सारा मिलके 1000 किलो से अधिक वजन भगवान के ऊपर लगाते हैं, भगवान को बड़े प्रेम से सजाते हैं। और अगले दिन देखने को आते हैं लक्ष्मी जी, क्या हो रहा है देखो, रात भर बाहर रहे, देखते हैं क्या हो रहा है उनका। लेकिन जैसे गुस्से से आती है वो और जब से देखती है, देखने मात्र से उसका सारा वो गुस्सा वो भूल जाती है, क्रोध खत्म हो जाता है उनका, पिघल जाते हैं बिल्कुल एकदम प्रेम में, और एकदम उसकी जगह प्रेम उत्पन्न होता है। तो आते हैं बड़े क्रोध से, एकदम आँखें उनकी देखते एकदम प्रेम से भर आती है, और तुरंत फिर जगन्नाथ को अंदर ले जाते हैं। तो ये भगवान का शूनावेश, इसलिए भगवान को ललित जगन्नाथ भी कहा गया है, मतलब ललित मतलब जो अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर सुंदर वेश पहनते हैं, जो मतलब ड्रेसिंग में बहुत एक्सपर्ट है, उसको ललित कहते हैं संस्कृत में, ललित माधव वामे विश्व भानु कन्या, मतलब भगवान जो है बड़े सुंदर तरीके से वस्त्र पहनते हैं। इनके 15-20 वेशों का वर्णन यहाँ पर दिया है, पद्मा वेश है, कालिया दमन वेश है, दामोदर वेश है, हाँ बड़ा वेश है, त्रिबोलगा वेश है, बहुत सारे अलग अलग वेश है जो अलग अलग मौसम में, ओढ़न षष्ठी के दिन पे वो गर्म वस्त्र पहनते हैं, आगे के 3 महीने ठंड के मौसम में पहनते हैं, अलग अलग प्रकार के सुंदर ड्रेस पहन करते हैं। और एक ऐसा दिन है रास पूर्णिमा का दिन, उस दिन वो बांसुरी भी धारण करते हैं, सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं और उनके हाथ में बांसुरी भी देते हैं सोने की, क्योंकि उस दिन उन्होंने बीच रात में बांसुरी बजाई थी, सब गोपियों को बुलाया था। एक और उनकी कथा आती है कि कैसे वो, मैंने आपको एक तो कहानी बताई पहले से ही खिचड़ी वाली कहानी, कैसे उन्होंने एक मुसलमान औरत से खिचड़ी स्वीकार किया, और आज तक वो प्रथा चलती आ रही है उसकी याद में, उस भक्त की याद में। कि दाल चावल की खिचड़ी आज भी बनती है और 10,000 लोगों को वो खिचड़ी का फ्री में बांटते हैं उसको अन्न छत्र के अंदर। वैसे ही एक मुसलमान राजा थे, वो बहुत आतंकवाद राजा था। जब वो दिग्विजय करने के लिए गया चारों दिशा में, तो उसको एक सुंदर हिंदू स्त्री जो है नज़र आई, तो उसने उसको खड़प लिया और ज़बरदस्ती अपने पत्नी बना लिया। तो उनके संबंध से एक पुत्र के जन्म हुआ, उसका नाम था साला बेग। साला बेग उनका पुत्र था, माता हिंदू थी, राजा मुसलमान राजा, पिता था उसका। तो वो जब बड़ा हो गया तो अपने पिता के समान उसने भी खूंखार कार्य शुरू किया और वो एक जगह युद्ध में गया था तो बहुत जख्मी हो गया। और उस ज़माने में जानते थे आप, अभी भी ये होता था, ये अभी भी, कि क्षत्रानियाँ भी अपने पति के साथ में युद्ध में जाती थी, तंबू में रहती थी लेकिन बिल्कुल युद्ध भूमि में रहती थी वो पति के साथ में। रोज़ पति वापस आएंगे तो मरहम पट्टी करना, उनको हौसला देना, उनका उत्साह बढ़ाना, ऐसा काम करती थी। तो ये उनकी माता भी गई थी, तो पुत्र जो है साला बेग बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया। तो तब उसने कहा अपनी माता ने कि तुम जगन्नाथ भगवान का नाम का जप करना, उनका स्मृति याद करना, तुम ठीक हो जाओगे। तो माता के आज्ञा के अनुसार उसने बड़े प्रेम से जगन्नाथ का स्मरण किया और बहुत जल्दी वो ठीक हो गया। तो बड़ा विश्वास उत्पन्न हुआ उसके हृदय में जगन्नाथ के प्रति। तो फिर वो सब राजपाट छोड़ के वृंदावन चला जाता है और वहाँ पर साधुओं के बीच में रहकर बड़ी तपस्या करता है, एकदम तपस्वी संत बन जाता है। और फिर वो जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए निकलता है वहाँ से। वो सुनाई पड़ता है उसको कि भगवान रथ में बैठ के जाने वाले हैं रथ यात्रा के उत्सव में। तो जब वो निकलता है वहाँ से तो रास्ते में वो बीमार पड़ जाता है और रथ यात्रा का समय पास आता है तो उसको बहुत दुख होता है। तो वहीं पड़े पड़े संत के रूप में, अभी तो राजा तो नहीं है, वो राजपुत्र नहीं है, तो संत के रूप में रास्ते में पड़ा हुआ है और भगवान को पुकार रहा है वो जगन्नाथ को, हे भगवान, हे नीलाचल वासी। बड़े अच्छे अच्छे व्यंजनों से भगवान को पुकारता है, कहता है कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ, जब तक मैं आऊँगा तब आगे नहीं बढ़ना। जगन्नाथ बड़े अंतर्यामी है, बड़े हृदय से वो पुकार रहा है। तो भगवान का रथ जो है एक जगह आकर रुक जाता है, वो आगे ही नहीं बढ़ता है। सब लोग खींच रहे हैं, हाथी लगा रहे हैं, सब कर रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है। और फिर धीरे 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 बहुत कोशिश करके ये वहाँ पहुँचता है और जैसे ही वहाँ पहुँचता है फिर रथ आगे बढ़ता है। तो जब वो पहुँचता है, वो भगवान का दर्शन करता है, तो बड़े सुंदर सुंदर कविता बोलता है तुरंत स्फूर्त तरीके से। तो सबको पता चलता है कि ये भक्त जो है इसके वजह से रथ यहाँ पर रुका था। बड़े सम्मान करते भक्त लोग सब उनका, हाँ, उसी जगह पर उसको रहने का इंतजाम करते हैं जहाँ पर ये घटना हुई थी। आज भी वो जगह वहाँ पर ग्रैंड रोड पर उपस्थित है, जहाँ पर आगे जाकर साला बेग संत ने बहुत भजन लिखे जगन्नाथ के उड़िया भाषा में, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु के जो भजन है ना, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, ये सब भजन जैसे जो भाव है इसके अंदर कि मुझे राज्य में कोई रुचि नहीं है। जगन्नाथ अष्टकम में भी ये वर्णन किया गया है, हाँ, न चम राज्य क्या न माणिक्यम न बोलते ना राज्य माणिक्यम, मुझे कुछ इच्छा नहीं है इसकी, मुझे क्या आपकी भक्ति की अभिलाषा है। तो उस प्रकार से उसके भजन में बहुत सारे वर्णन हैं और जगन्नाथ देव को ही वो बहुत आराधना करते हैं। ऐसे बहुत सारे भजन आज भी जगन्नाथपुरी में गाए जाते हैं। तो उसी जगह पर फिर उसका शरीर वो छोड़ता है और उसी जगह पर उसकी समाधि बनाई गई है, साला बेग की समाधि। तो ये अनोखे भक्त जो है वहाँ पर हुए थे। और आखिरी कहानी मैं आपको बताऊँगा जगन्नाथ की विशेष कहानी, वो नाभि ब्रह्म की। जगन्नाथ जो विग्रह हैं भगवान के, जब वो ऐसा कहा गया कि 12 साल के बाद या 13 साल के बाद में, जब अधिक मास कुछ आषाढ़ का या ज्येष्ठ का आता है, उस समय जगन्नाथ का शरीर जो है उसको वो जगन्नाथ मंदिर का जो मंडप है पीछे उधर उसको दफना देते हैं। और वो दफनाने के पहले जो जगन्नाथ जी का सबसे बुढ़ा पुजारी है उस समय जो सबसे सीनियर मोस्ट है उम्र से और सेवा से, उसी ही के स्वप्न में भगवान प्रकट होते हैं और उसको आदेश देते हैं कि अभी मेरा शरीर बदलने का समय हो गया है, अभी तुम जाओ और मेरे लिए जो लकड़ी है पेड़ उसको इस दिशा में इस फलानी जगह पर जाओ और तुम्हें मैं प्राप्त हो जाऊंगा। तो जैसे ही स्वप्न आता है, ये हर 13 साल में एक एक पुजारी को वो स्वप्न आता है और इसे कहा गया है, मैं आगे बताऊंगा आपको। तो वो जो सपना आता है तो तुरंत वो अपने परिवार के लोगों को इकट्ठा करता है, 300-350 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वो फिर बड़े ही उत्सव से पूजा आरती करने के बाद में निकल पड़ते हैं। और उनको दिशा स्वप्न में बताई गई होती है किस जगह जाना है उनको, तो उस जगह पर जाते हैं तो उसके बहुत निशानी हैं। जैसे कि वो जब जगह पहुँचते हैं और जो सही वृक्ष अगर उनको चाहिए तो उस वृक्ष पर चक्र और शंख के चिन्ह होते हैं, और बलराम जी के वृक्ष पर हल और गदा के चिन्ह होते हैं, और उस जहाँ पर वो दो पेड़ होंगे उसके राइट साइड में एक सरोवर होता है, होना चाहिए, और उसके पास में एक नाग उसकी रक्षा करने के रूप में खड़ा होने वाला दिखना चाहिए। ये सारे चिन्ह जब एकत्र होंगे, सरोवर भी उजू दाहिने तरफ है, एक पीला नाग भी वहाँ पर खड़ा है रक्षा के रूप में, और पेड़ पर चिन्ह है चक्र और शंख के, और सुभद्रा के पीले रंग का वृक्ष सब मिलेगा उनको, तभी फिर वो उनके पास तीन प्रकार की कुलाड़ी होती है, एक सोने की प्योर गोल्ड की होती है, एक प्योर सिल्वर की होती है, और एक लोहे की होती है। तो फिर सोने की कुलाड़ी से पहले वो उसको एक घाव करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर चांदी की कुलाड़ी से घाव करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर लोहे की कुलाड़ी से घाव करते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर बड़ी बड़ी कुलाड़ी लेकर फिर उस पेड़ को काटने का आरंभ करते हैं। बड़ी पूजा होती है, मतलब पेड़ को काटने के पहले पूरा वो चिन्ह जो है उसके पेड़ के ऊपर, मेरे पास सब चित्रपट है, मैं आवाज लाया नहीं है, आपको आश्चर्य होगा देखकर, ऐसे बड़ा झाड़ है उसके बीच में सडनली एक ऐसा हिस्सा आगे आता है और चक्र बना है उसके सामने, तो उस पर माला बला पहना के उसके यज्ञ करते हैं, और फिर तीनों वृक्षों को काटते हैं, और लकड़ी से ही बने हुए जो गाड़ी है उसको डालकर वो जगन्नाथपुरी लेके आते हैं, फिर एक ही विशेष परिवार के लोग जो हैं उनसे उसकी मूर्ति बनाते हैं, और जब ये मूर्ति तैयार होती है तो फिर उस समय पहले वाली मूर्ति के पेट के हिस्से में लकड़ी के द्वारा बनाया गया दरवाज़ा होता है, छोटा सा दरवाज़ा, तो जो बड़ा पुजारी होता है मेन पुजारी वो आँखों को बंद करके वो दरवाज़ा खोलता है, और अंदर एक वस्तु होती है जिसका नाम है नाभि ब्रह्म, वो पुजारी भी उसका वर्णन ठीक से नहीं कर पाते हैं क्या है वो, कि हमारी रिवाज ऐसी है कि हमको आँखों को पट्टी मारकर ही उसको निकालना पड़ता है, और जब हम उसको निकालते हैं तो हाथ में अनंत ऊर्जा का अनुभव होता है, अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी दे फील इन द हार्ट, सम मोस्ट पावरफुल थिंग, और उसमें जो 13 साल पहले हुए जो अंदर रखे हैं फूल वो वैसे के वैसे रहते हैं फ्रेश बिना मुरझाए हुए, तो उसके साथ में उसको निकालते हैं और नए मूर्ति के नाभि में डालते हैं उसको और बंद कर देते हैं, फिर आँखों की पट्टी खोल देते हैं, तो उसे यू कैन से दे इज लाइक जगन्नाथ जी का आत्मा कह सकते हैं उसको आप, या सोल ऑफ दी डीटी कह सकते हैं। तो वो एक शालिग्राम शिला है जो सनातन गोस्वामी अपने एक भजन में उसका उल्लेख करते हैं कि भगवान जगन्नाथ शालिग्राम के रूप में जगन्नाथ के ही नाभि में विराजमान हैं, और जब ये निकाल लेते हैं नाभि ब्रह्म तो फिर उन तीन मूर्तियों का मंदिर के पीछे जगह है जो स्मशान भूमि कहते हैं, उसको वहाँ पर दफना देते हैं, और फिर ये मूर्ति को फिर अभिषेक करके उनकी प्रतिष्ठापना करते हैं, और फिर वो उन मूर्ति की सेवा होती है। ऐसे अद्भुत लीला, ऐसे किसी भगवान के बारे में होता नहीं है, लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में ये प्रथा जो है वो शुरू से चलती आ रही है, और जगन्नाथ जी के जो रथ है उसका आरंभ बनाने का आरंभ जो है वो अक्षय तृतीया को होता है, ज्येष्ठ महीने के शुद्ध पक्ष के तृतीया के दिन तीसरे दिन जो है बड़े समारंभ के साथ में वो रथ बनाना आरंभ करते हैं। उसके पहले 600 पेड़ जो हैं फंसी नाम के झाड़ हैं, फंसी नाम का कई प्रकार झाड़ है लेकिन फंसी मेन झाड़ है उसके अंदर, वो झाड़ जो है वो पुराने ज़माने में जब राजा इंद्रद्युम्न के जो वंशज थे उनके पास में वो अधिकार था कि वो ही उस रथ के लिए लकड़ी प्रोवाइड करेंगे, तो उनको साल भर वो लकड़ी बनाने का काम करना पड़ता ना, पेड़ लगाना, वो पेड़ बहुत धीरे धीरे उगता है, तो एक साथ में जब हजारों पेड़ लगाएंगे तो आपको साल में 600 पेड़ ऐसे मिलेंगे जिसमें से काट कर आप रथ बना सकते हैं, तो ऐसे वो पेड़ जो हैं अभी बताया जाता है कि बिकॉज लोग वन का नाश कर रहे हैं धीरे धीरे वो पेड़ भी ख़त्म होते जा रहे हैं, और उनको गारंटी नहीं है कि अगले साल में रथ बनने के लिए पर्याप्त मात्रा में लकड़ी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए भुवनेश्वर जो इस्कॉन है हमारा, हमारी संस्था का मंदिर है भुवनेश्वर जगन्नाथपुरी के 1-1.5 घंटा रास्ते पर आगे हैं, हमारे मंदिर की ओर से जगन्नाथपुरी उड़ीसा का जो गवर्नमेंट है वहाँ पर एप्लीकेशन दिया गया, और जगन्नाथपुरी के उड़ीसा के राजा जो गवर्नमेंट है ओरिजिन गवर्नमेंट उन्होंने 150 एकड़ जगह भुवनेश्वर इस्कॉन को दान में दी है, और फिर भुवनेश्वर इस्कॉन ने एक लंदन की संस्था है जो उतने पर्यावरण पर्यावरण संभालने वाली संस्थाएं, उनकी तरफ से उनको ये पेड़ बनाने के लिए फंड्स मिले हैं और अभी 70,000 वृक्ष वहाँ पर लगाए गए हैं, 70,000 trees, जिसके कारण आगे जाने वाले भविष्य में किसी भी एक साल में 600 वृक्ष हमको मिल सकते हैं। इसके द्वारा ज्येष्ठ महीने के तृतीया से, अक्षय तृतीया के दिन से ज्येष्ठ महीने के क्या कहते हैं उसको, 3 महीना मतलब कभी होता है वो आषाढ़ महीने के पास में होगा ना, तो बहुत जल्दी जल्दी 3 महीने में उसको बना देते हैं, 2 महीने पहले उसको चालू करते हैं, ज्येष्ठ वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण में, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 2 महीने पहले उसको, और 2 महीने में वो रास्ते पर ही सबके सामने रथ बनाया जाता है। उस रथ में कोई किला नहीं होता है, किधर भी नो नेल, जो भी केले होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, जो भी आरी होती है वो लकड़ी की होती है, सब जगह लकड़ी से ही ठोकते हैं और लकड़ी के ही हथौड़े से उसको ठोकते हैं, एवरीथिंग इज लकड़ी ओनली। और जब रथ यात्रा समाप्त होती है तो सारे रथ जो है उसको डिसमेंटल करके वो लकड़ियाँ भगवान के किचन में जाती हैं, और कम से कम 9 महीने तक भगवान का जो 56 भोग का इंतज़ाम है वो तो लकड़ियाँ से उनका रसोई बनता है। ऐसे जगन्नाथ भगवान की लीला है। बोलो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। गौरांग महाप्रभु की जय। थाई गौर प्रेमानंदे। तो अगले मंगलवार से हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा मालिका आरंभ करेंगे, तो अगले बार से आप जन्माष्टमी के मूड में आ जाना सब लोग।